તારીખ 15/12/1995, પૂજ્યબેન શ્રીના વચનામૃત, બોલ નંબર 371, 269 અને 210 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 360.
વચનામૃત મેં પૂજ્ય બહેન શ્રી ને કુંદકુંદ આચાર્ય દેવ કે એક ગાથા કા ઉદ્ધરણ ક્યા હૈ. ભગવાન કુંદકુંદ આચાર્ય દેવ આજ સે 2000 સાલ પહેલે દક્ષિણ ભારત મેં વિચરતે થે. કહા જાતા હૈ કે 12 સાલ કી ઉમર મેં ઉન્હોને દિગંબરી દીક્ષા ધારણ ક્યા થા. और वर्तमान काल के जो आचार्य हुए उसमें भी जो शासन के स्तंभ रूप आचार्य हुए उसमें भगवान कुंदकुंद आचार्य का बहुत बड़ा स्थान है. मंगलाचरण में भी गौतम स्वामी जो आचार्य श्रेष्ठ होते हैं, आचार्य शिरोमणि होते हैं, इनके बाद कुंदकुंद आचार्य का नाम लिया जाता है. भले ही 500 साल बाद हुए हैं फिर भी. और इसके पहले जो धर्षेण आचार्य हुए उन्होंने प्रथम श्रुत स्कंद की रचना की धर्षेण आचार्य के उपदेश से पुष्पदंत और भुतबली आचार्य ने किया. वो ग्रंथारूढ़ ज्ञान किया, वो करुणानुयोग का किया, जबकि बाद में कुंदकुंद आचार्य ने अध्यात्म को ग्रंथारूढ़ किया. ये द्वितीय श्रुत स्कंद हुआ. वर्तमान काल में जो अध्यात्म विद्या जिसको भी प्राप्त होती है वो कुंदकुंद आचार्य की परंपरा से हुई है. फिर बाद में आचार्य हुए, इससे कुछ ज्ञानी हुए और गुरुदेव को भी कुंदकुंद आचार्य देव की रचित समयसार की कृति मिली और गुरुदेव को भी ज्ञान प्राप्ति हुई. और फिर वर्तमान में बहुत बड़ी अध्यात्म की क्रांति भारत में फैली. तो मूल तो कुंदकुंद आचार्य देव की बात है. कृपाणुदेव को भी समयसार आश्रम में आया, उनको भी आत्मज्ञान की प्राप्ति इस भाव में दोबारा हुई. और इस तरह से बनारसीदास को भी कुंदकुंद आचार्य का समयसार का उपकार है. ऐसे बहुत से ज्ञानियों को कुंदकुंद आचार्य देव का उपकार बहुत है. आज उनका आचार्य पदवी आरोहण दिन है. उस विषय में पेंसिल ने उद्धरण किया है, गाथा समय सार की है. जैसे स्वप्न के लड्डुओं से भूख नहीं मिटती है, जैसे मरीचिका के जल से प्यास नहीं बुझती, वैसे ही पर पदार्थों से सुखी नहीं हुआ जाता. कितनी भी पर पदार्थ मिल जाए, कितनी भी संयोग की अनुकूलताएं हो जाए, फिर भी सुख कहीं बाहर से आता नहीं. न सचेत पदार्थ से आता है, न अचेत पदार्थ से आता है. अपना सुख अपने आत्मा में से आता है. और जो भी ऐसे अपने को सुखी मानते हैं वो स्वप्न के लड्डुओं से भूख मिट गई ऐसा एक स्वप्न में आभास होता है, ऐसी ही बात है. इससे ज्यादा और कुछ बात नहीं है. इसलिए आत्मस्वरूप में लीन होना, इस विषय में ये समय सार के शायद 206 नंबर की गाथा है. ये 206 नंबर की गाथा है, निर्जरा अधिकार की गाथा है. इसमें सदा रतिवंत बने, इसमें सदा संतुष्ट रहे, इसमें ही बन तू तृप्त उत्तम सौख्य ही जिससे तुझे. इसमें मैंने अपने आत्म स्वरूप में ही तू व्रतिवंत, मैंने प्रीतिवंत बन। टीका तो बहुत सुंदर किया है अमृत चंद्राचार्य देव ने कि जितना यह ज्ञान है उतना ही यह आत्मा है और उसमें तुम प्रीति कर, उसमें तुम व्रति कर। कोई और जगह प्रीति करना लायक नहीं है और उसमें ही तुम संतुष्ट। जितना ये ज्ञान है उतना ही आत्मा है, उसमें तुम संतुष्ट हो जाओ। और जगह तुम्हें कहीं भी संतोष प्राप्त होगा नहीं। और जितना ये ज्ञान है उतना ही अनुभवनीय पदार्थ है, अनुभव करने लायक पदार्थ है, वो कल्याणमय पदार्थ है, इसलिए संतुष्ट हो जाएगा। तो जितना यह ज्ञान है उतना ही कल्याण है, इसलिए उसमें संतुष्ट हो। और जितना यह ज्ञान है उतना ही अनुभव करने योग्य पदार्थ है, इसलिए इसमें तुम तृप्त हो जाओ। तुम्हें अतृप्ति नहीं रहेगी और तुमको कोई वचन से अगोचर सुख की प्राप्ति होगी। वचन अगोचर सुख मिलेगा, जो वचन से कहा नहीं जाएगा, ऐसा उत्तम श्रेष्ठ आत्म सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और यही सुखी होने का उपाय है। तुम दूसरे को मत पूछ, वहां ऐसा लिखा है अमृतचंद्राचार्य ने, माँ अन्यान प्राक्षी, तुम दूसरे को अन्य को मत पूछ, ऐसा लिखा है। और इस बात में तुम विश्वास करो। वैश्विक कहते हैं कि इस बात में तुम विश्वास करो कि तेरा उत्तम श्रेष्ठ सुख आत्मा में से ही मिलेगा और जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है। इससे ज्यादा आत्मा के विषय में कोई चिंतन करने का भी जरूरत नहीं है, उसमें लीन हो जाओ, तृप्त हो जाओ। ऐसे आज के दिन के विषय में है और आगे 269 बोल है, वचनामृत 269। हिंदी में पेज संख्या 105 है। अहो देव शास्त्र गुरु मंगल है, उपकारी है, हमें तो देव शास्त्र गुरु का दासत्व चाहिए। देखो कितनी विनम्रता है ज्ञान दशा में कि अहो देव शास्त्र गुरु मंगल है, मैंने कल्याणकारी है। वितराग देव, वितरागी गुरु और इनकी वाणी जो शास्त्र है, ये आत्मा को धर्म को, आत्मा के धर्म को प्राप्त कराती है, इसलिए वो मंगलकारी है और जीव को उपकारी है। हमें तो देव शास्त्र गुरु का दासत्व चाहिए। हमें तो देव गुरु शास्त्र का दासत्व चाहिए, उनकी सेवा करें हम। हम तो उनके चरण में रहें। पूज्य कहान गुरुदेव से तो मुक्ति का मार्ग मिला है, अब गुरुदेव की भक्ति करते हैं। इस वचनामृत में गुरुदेव की भक्ति अच्छी किया है, बहुत अच्छी किया है। तो पूज्य कहान गुरुदेव से तो मुक्ति का मार्ग मिला है, हमको जो मुक्ति का मार्ग मिला है वो तो गुरुदेव से मिला है। जिन्होंने चारों ओर से मुक्ति का मार्ग प्रकाशित किया है, चारों पड़खों से, चारों ओर से मैंने चारों पड़खों से मुक्ति का मार्ग प्रकाशित किया है, बहुत छानबीन किया ने। 45-45 साल अध्यात्म के शास्त्रों पर, आगमों पर प्रवचन करके मुक्ति का मार्ग को बहुत स्पष्ट किया। गुरुदेव का अपार उपकार है, वो तो इसमें लिख दिया ने, वो परमागम सार में कि आत्मा ने पर्याय पर्याय गुरुदेव नो उपकार है। एक एक समय ने पर्याय थाय छे, ये बधी पर्याय, पहली पर्याय थी तरह उपकार ने, त्यार पछीनी बधी पर्याय धर्म प्रगट हुआ, उसके बाद जितनी भी पर्याय हो रही है, प्रति पर्याय में, एक एक पर्याय में उनका उपकार हम देखते हैं। ये ज्ञान दशा में भी गुरु के प्रति कितनी भक्ति आती है। उन्होंने चारों ओर से मुक्ति का मार्ग प्रकाशित किया है, गुरुदेव का अपार उपकार है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वह उपकार कैसे भूला जाए, उस उपकार का विस्मरण होवे तब तो स्मरण करे, जिसका विस्मरण ही नहीं होवे उसका स्मरण भी क्या करे, वो कैसे भूल सकते हैं, वो भूल सकते नहीं है। जिसके कारण से चार गति के दुख मिट जाएंगे और शाश्वत परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, उसका उपकार कैसे भूला जाए। हाँ, हम ज्ञानी हो गए हैं, हम बहुत जानते हैं, वो बात नहीं है। आत्मा शब्द भी हम बोलते मगर आज बोलते हैं, तो उसने सिखाया तो बोलते हैं। बहुत बहुत नम्रता तो बहुत आई है, भक्ति तो ऐसी ही होती है। हाँ, वास्तविकता भी वही है। इसके पहले आत्मा बोलते थे तो उसमें क्या दम था, वो आत्मा शब्द बोलने में कोई दम नहीं था। गुरुदेव का द्रव तो अलौकिक है, गुरुदेव का द्रव है वो अलौकिक द्रव है। वो तो गुरुदेव को खुद को भी कभी विस्मय होता था। एक दफे ऐसा बना था, गुरुदेव प्रवचन करके दोपहर को 3 से 4 प्रवचन किया और अपने कमरे में आए प्रवचन करके, लगा के बुखार है, बुखार है, तो लगता है कि बुखार है। फिर थर्मामीटर लगाया, लगाए तो 103 डिग्री का बुखार था। जो प्रवचन चला उसमें ना खुद को मालूम हुआ है, न सुनने वाले को भी मालूम हुआ कि 103 डिग्री में ये प्रवचन चलता है। तो सबको आश्चर्य हुआ, अरे महाराज साहब आप 103 डिग्री में प्रवचन करते थे, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। तो क्या हमको नहीं मालूम पड़ा, किसी को कैसे मालूम पड़ेगा। फिर उतना बोल गए, ये द्रव्य ही आश्चर्यकारी है। क्या बोले, द्रव्य ही आश्चर्यकारी है, खुद को भी विस्मय लगता था। क्योंकि ताकत तो बहुत है ना, बहुत ताकत है। और अभी तीर्थंकर प्रकृति बंधी नहीं है तो भी एडवांस में धर्म प्रचार गुरुदेव के निमित्त से चालू हो गया और समोसरण की तैयारी यहां से होने लगी। वो समोसरण लगेगा ना 4 भाव के बाद सूर्य कृति भगवान का, उस समोसरण में यहां के सुनने वाले कहीं जीव साथ में होंगे हैं। हाँ, वो तो अपन नहीं कह सकते क्योंकि कभी कभी कोई सुनने वाले ऊंधे भी पड़ते हैं, तो सभी का तो समोसरण में भी मुक्ति नहीं होती है। भावना तो ऐसी होती है सभी तीर्थंकरों की कि जगत के सभी जीव को हम मोक्ष में ले जाए, लेकिन अनंत तीर्थंकर हुए तो भी अनंत जीव अभी संसार में है। तो ये तो भावना है, वो सिद्धांत को भी गिनती नहीं है। क्या है, भावना सिद्धांत को वस्तु स्वरूप को गिनती नहीं है। वस्तु स्वरूप तो ऐसा है कि संसार के सभी जीव मोक्ष में कभी जाते नहीं, न सभी भव्य जाते तो अभव्य का तो सवाल ही नहीं है। फिर भी तीर्थंकरों को ऐसी ही भावना आती है। लेकिन हाँ, लेकिन समोसरण में जाने वाले भी सभी मुक्ति में नहीं जाते, बाहर वाले तो कहाँ से जाएंगे। समोसरण में तो भव्य ही आते हैं, फिर भी सभी मुक्ति में नहीं जाते, कोई तो अन्यमति भी हो जाते हैं, अन्यमत भी चलाने लग जाते हैं, समोसरण में भी ऐसे होते हैं।
जो ज्ञानी तीर्थंकर रहते हैं वो कोई इस भाव में छिपे नहीं रहते, वो भी इस भाव में छिपे नहीं रहते,
मतलब
प्रकाशित ही रहते हैं। तीर्थंकर ही हैं वो, दूसरे को भी नहीं होता है।
हाँ, दूसरे को भी विश्वास प्रतीति हो जाती है। तो कई लोग कहते थे कि आप तो तीर्थंकर हैं, कईयों को मालूम पड़ा था। और सबसे पहले उन्होंने कहा, जो गुजर गए बढ़वान के नारायण भाई जो महावेदे में उन लोगों के साथ थे, मित्र थे, वो नारायण भाई ने सबसे पहले बोले कि महाराज लगता है कि आप तीर्थंकर होंगे। फिर बेंसरे के जाति स्मरण ज्ञान में वो बात आई और स्पष्ट हो गई। रुचि हो तो उनको, हाँ रुचि हो तो एक आत्मासन सबसे जो बात ज्यादा है कि अध्यात्म की जो बहुत रहस्यभूत बातें होती हैं, टॉप सीक्रेट जिसको कह सकते हैं, ऐसी अध्यात्म की रहस्यभूत बातों को अपने आत्मज्ञान से स्पष्ट करके जगत के सामने खोल करके रखती, इसलिए उनका श्रुत ज्ञान भी आश्चर्यकारी है। और कभी कभी तो बैंसरी ऐसा कहते हैं, कहते थे कि गुरुदेव के अंतर में श्रुत ज्ञान का समुद्र उछाला खाता है, इतना इतनी बातें निकलती हैं प्रवचन में, नई नई और बहुत से प्रकार की, तो पूरा सुज्ञान का दरिया डोलता है अंदर और बहुत सा रत्न उसमें से निकलता है। तो बहुत से सूत्र भी दिए हैं इसमें, ये बहुत अमूल्य सूत्र जो अपन आत्म जागृति में लिया, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत वही वास्तविक शुरुआत है, ये बहुत बड़ा सूत्र दिया। गुरुदेव का श्रुत ज्ञान भी आश्चर्यकारी है और उनकी वाणी भी आश्चर्यकारी है। वाणी इसलिए आश्चर्यकारी है कि एक प्रवचन सुने और योग्यता होवे तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान देने आत्मानुभव की प्राप्ति हो जाए। आश्चर्यकारी चमत्कारी वाणी है और वो बात प्रसिद्ध है। ऐसा भी हुआ, परम उपकारी गुरुदेव का द्रव्य मंगल है। वो द्रव्य मैंने जीव द्रव्य, द्रव्य भी मंगल है क्योंकि तीर्थंकर का द्रव्य है तो कल्याणकारी मंगल माने कल्याणकारी का ही है। परम उपकारी गुरुदेव का द्रव्य मंगल है, उनकी अमृतमयी वाणी मंगल है। तो ये जो बोलते थे तब तो गुरुदेव विद्यमान थे, तो उनकी वाणी भी मंगल है, वाणी भी कल्याणकारी है, अनेक जीवों को आत्महित में आत्म कल्याण में निमित्त पड़े ऐसा निमित्तत्व वो धर्म भी उस वाणी में है। वे मंगल पूर्ति है, गुरुदेव खुद ही मंगल मूर्ति है, सब मंगल ही है, गुरुदेव का जो भी है सब मंगल है। इसलिए मंगल ही मंगल है सब, स्थान मंगल, आसन मंगल, ज्ञान मंगल सब वचन मंगल सब मंगल। और वो भोग दीतारण हार है उदधि मैंने समुद्र बहु समुद्र का वो तारण हार है। बहु समुद्र में जीव डूबते हैं डूब रहे हैं उनको बहुत से जीवों को ये बहु समुद्र तिरने में कारण होंगे। ये भोग भी तारण हार है दूसरे जीव में जीव को करने में निमित्त बनते हैं वो आगम कहता है कि निमित्त बनते हैं। अध्यात्म कहता नहीं है कि वो निमित्त बनते हैं। अध्यात्म को ये कहता है कि वो उपादान बन जाते हैं निमित्त नहीं बनते हैं। तो अध्यात्म का जिसको जो है पक्ष है या अध्यात्म का विशेष रूप से वो है उनको ये लगेगा कि आप निमित्त कह करके क्यों इतनी नीची पदवी में ले जाते हो गुरुदेव को ऐसे नीची पदवी में क्यों ले जाते हो उसको उपादान कहो ना निमित्त निमित्त क्यों कहते हो ये बात हमको अच्छी
नहीं लगती
है। जैसे सुगानी जी ने कहा कि आत्मा को मुक्ति से पहचानना वो तो गाली देना बराबर है क्या राग करता है आत्मा वो बात को छोड़ो लेकिन मुक्ति के पर्याय से उनको पहचानना वो तो पुरुष को स्त्री से पहचान कराने के बराबर है। वो तो उसको पुरुष का लांछन हो गया कि उसमें कुछ नहीं है क्या कि फलानी का धनी है ऐसा कोई बोले तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे मुक्ति तो एक समय की पर्याय है और पर्याय स्त्रीलिंग है जबकि आत्मा पुल्लिंग है प्रयासी है। तो मुक्ति से पहचानना हो तो गाली देना बराबर है क्यों एक समय की मुक्ति की पर्याय तो आत्मा के अनंत सामर्थ्य के आगे कुछ नहीं है अनंत में भाग में है। ऐसे अनंत ही मुक्ति पर्याय का वो जनक है उत्पन्न करने वाला है तो इससे क्या इसकी पहचान करे। इसलिए गुरुदेव को निमित्त कहेंगे
नहीं
गुरुदेव को उपादान कहेंगे। वो भोग भी तारण है महिमावंत गुणों से भरपूर है और दिव्य गुणों प्रकृति दिव्य गुण प्रकट किए हैं वो सब गुण महिमावंत हैं ऐसे गुणों से वो भरपूर है। वो बेंचन का उपता उतना बड़ी दृष्टि हो गया था गुरुदेव के प्रति उतनी गुण दृष्टि हो गई थी कि ये गुरुगुण संभावना में बहुत अच्छी बातें आई उसमें ऐसी भी बात आई कि गुरुदेव स्थानक वासी में जन्म लिया इसमें भी हमको गुण दिखता है दोष नहीं दिखता है कि ये ऐसे कैसे आगे गृह मिथ्यात के संप्रदाय में वो बात नहीं किया इस तरह से बात नहीं किया। अरे स्थानक वासी में आए तो बहुत से स्थानक वासियों का उद्धार हो जाएगा और बहुत सौ को बाहर निकाल दिया स्थानक वासी में से स्थानक में से बाहर निकाल दिया। तो जब गुण दृष्टि होती है तो हर बात में गुण ही गुण दिखता है अवगुण दिखता ही नहीं। इतनी गुण दृष्टि हो गई इतना उपकार दृष्टि हो गई कि कहीं अवगुण
दिखता ही नहीं
दिखता ही नहीं। ये गुरुगुण संभावना पर पढ़ने लायक है गुरु भक्ति कैसे होती है।
पाछा भी
बात सही है बहुत से तो खुद ही स्वतंत्र संप्रदाय में आए, तो काफी लोग जो है दिगंबर हो गए. एक को दिगंबर बनाना मुश्किल है. बहुत से सहज सहज पानी के प्रभाव से हो गए. पूज्य गुरुदेव के चरण कमल की भक्ति और उनका दासत्व निरंतर हो. उनको क्या कहते हैं भावना रखते हैं, तो पूज्य गुरुदेव के चरण कमल की भक्ति और उनका दासत्व निरंतर हो.
शुरू में दीक्षांत गुरु का दासत्व लिया, अंत में पूज्य गुरुदेव का दासत्व.
हाँ,
ऊपर में देवशास्त्र गुरु का दासत्व चाहिए लिखा.
देव गुरु शास्त्र के नाम से शुरू करके फिर पूरा वचनामृत में गुरुदेव की भक्ति किया है. गुरुगुण संभावना में तो कभी कभी पहले गुरुदेव की भक्ति किया है, पीछे देव गुरु शास्त्र की बात किया है, ऐसा भी है.
मुक्ति अपने आप मिलेगी, भक्ति होगी.
भक्ति में
मुक्ति है. भक्ति में मुक्ति है.
भक्ति में
मुक्ति नहीं
मांगी. मुक्ति नहीं मांगे, ज्ञान भी नहीं मांगा. दासत्व मैंने भक्ति मांगे. तो कृपा गुरु ने लिखा है, ज्ञानी से ज्ञान की याचना मत करना, भक्ति की याचना करना. तो वो बात पढ़ करके पूज्य बैंसरी को किसी ने प्रश्न किया था. हम खड़े थे उस वक्त, मैं थे, कि कृपालु देव ऐसा कैसा कहते हैं कि ज्ञान की याचना मत करो, भक्ति की याचना करो, ऐसे बात क्यों किया है? उसमें क्या मतलब, उसमें वो क्या कहना चाहते हैं? जिज्ञासा वो पूछने वाले के तो जिज्ञासा थे, तो उसमें वो क्या कहना चाहते हैं? अगर गुरुदेव ज्ञानी की भक्ति में कोई रहेगा तो उनका तो जो परिणमन है वो स्वयं ज्ञान में है, तो परिणमन दिखेगा तो ज्ञान सहज हो जाएगा, और बाद में उनको उसके परिणमन अनुसार आएगी, तो उनको आत्मज्ञान के बाद भी सुनने को सहज ही मिलेगी, तो उनको ज्ञान की याचना करनी नहीं पड़ेगी. भक्ति करते करते उसको ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा उत्तर दिया था.
सर्वस्व के देने वाले सुखानी
जी. हाँ, उन्होंने ऐसा लिखा, सर्वस्व के देने वाले श्री गुरु के चरण में हमें ले चल, विकल्प को कहते हैं. भक्ति और ज्ञान में अंतर है? कुछ प्रश्न वो है, कोई अंतर नहीं है. जो ज्ञान है वो स्वयं मूल्यांकन करता है अपने गुरु का, तो वो मूल्यांकन खुद ही भक्ति रूप है कि मेरे ऊपर कितना उपकार हुआ, तो खुद ही परिणाम, ज्ञान का परिणाम खुद ही भक्ति रूप है. इसलिए ज्ञान स्वयं ही भक्ति की पर्याय है. ज्ञान के पर्याय और भक्ति के पर्याय दो अलग अलग नहीं है, वो तो एक ही पर्याय का पहलू है.
भगवान मुक्ति देव
में
कृपण
नहीं, भक्ति देव में कृपण. तो भाषा बहुत लगते हैं कृपा देव, बहुत व्यंग करते हैं, उनकी शैली थी और इफेक्टिव होता है. व्यंग है वो इफेक्टिव होता है.
जिस ज्ञान में से भक्ति उपजे नहीं तो उसको ज्ञान कैसे कहे?
वो ज्ञान ही नहीं है. जिस ज्ञान में से भक्ति नहीं हुए वो ज्ञान नहीं है, वो एक प्रकार का अज्ञान है. तो उसमें जो बात है कि भक्ति से भी भक्ति है वो ज्यादा मूल्यवान है, इसलिए वो नहीं देते. मूल्यवान चीज कैसे दे देंगे? मुक्ति से भी भक्ति
भीख मिलवाने, ऐसा कहने का मतलब है इसको पूछे क्यों, तो बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है, और जिसको प्राप्त होती है यथार्थ भक्ति वो तीर जाते हैं, इसलिए बहुत कम लोगों को प्राप्त हो, जब तक मुक्ति तो मुक्ति तो बहुतों को प्राप्त होती है ऐसा ले लिया, क्योंकि फिर मुक्ति आसान है, भक्ति उतनी आसान नहीं है, भक्ति मिलने के बाद मुक्ति उतनी आसान है, जबकि पहले भक्ति आसान उतनी नहीं होती, इसलिए भक्तिवान के प्रति उन्होंने अपने भाव दिखाए हैं।
भाव में तो निरंतर सानिध्य था, पर द्रव्य एकता भी चुकी है, द्रव्य एकता भी चुकी है ना, चरण कमल की भक्ति उनका दासत्व निरंतर
हो, उनकी भावना उतनी थी कि गद भाव से वो सब भाव में साथ में ही है, महाविद्य में भी साथ में थे, मित्र थे इधर भी साथ में थे बने, और आगे के चारों भाव में भी वो साथ में, आखिर भाव में तो इनके पुत्र होंगे, तीर्थंकर के पुत्र होंगे और फिर उनके गणधर होंगे, और उसी भाव में मुक्ति में
जाएंगे
जाएंगे। और फिर वचनामृत 210 गुरुदेव की भक्ति किया, कि तुम स्वयं मार्ग जानता नहीं है और जानने वाले ज्ञानी करे, और गुरु को तुम निमित्त कह करके गाली मत देना निमित्त क्या है, उतना नीचे दर्जे की बात करने की बात अच्छी लगती नहीं है। तू स्वयं तो अंधा है, और यदि गुरुवाणी एवं श्रुत का अवलंबन नहीं रखेगा तो अंतर में जो साधक का मार्ग है वह तुझे कैसे सूझेगा। क्या कहते हैं कि तू स्वयं तो अंधा है, अनादि से अंधा है, आजकल का नहीं है, अनादि से अंधा है,
उंगली पकड़ने,
हाँ ठीक है, गुरुवाणी एक उंगली है पकड़ ले तुम, तो तुमको जो अंतर में मार्ग है आत्मा साधने का, साधक का जो मार्ग है अंतर में मार्ग है वो कैसे मिलेगा, जो अंतर्मुख हुए हैं वही अंतर का मार्ग दिखाते हैं, तो जो साधक का मार्ग है वो तुझे सूझेगा नहीं, और सम्यक्त्व कैसे होगा, और तुझे सम्यक्त्व भी कैसे होगा, नहीं हो सकता, साधकपणा कैसे आएगा, ये साधकपणा आएगा नहीं, और केवल ज्ञान भी कैसे प्रकट होगा, सम्यक्त्व से लेकर के ऊपर की सभी दिशा है उसमें गुरु का उपकार है, गुरु उपकार को वो कहीं भूलना चाहते हैं नहीं है,
एक अंश आता से मनी ले पूर्ण कामता,
हाँ एक अंश आता से लेकर के पूर्ण कामता मैंने मोक्ष, एक सत्पुरुष का ही उपकार है 213 में, और अनुभव प्रकाश जैसा अध्यात्म शास्त्र है, दीपचंद जी लिखते श्री गुरु ने मार्ग सुगम कर दिया है, बात बात में वो भी श्री गुरु को बीच में ले आते हैं, पद्म ब्रह्मधारी देव मोक्ष पर्याय को परद्रव्य कहने वाले, गुरु की बात आती है तो बहुत भक्ति करते हैं, चरण कमल की बात सीधी आती है उनको अनंत काल का अनजाना मार्ग गुरुवाणी एवं आगम के बिना ज्ञात नहीं होता, सच्चा निर्णय स्वयं ही, सच्चा निर्णय तो स्वयं ही करना है, स्वयं को ही करना है, परंतु वो गुरुवाणी एवं आगम के अवलंबन से होता है, सीधा कभी किसी को होता
नहीं है।
ये नियम है, ये जो है आगम में भी वो नियम है, देशना लब्धि का
नियम है,
नियम है,
निमित्त नहीं का
आलम्बन किया है, निमित्त नहीं किया है, गुरुवाणी एवं आगम का आलम्बन लिया है, आलम्बन सच्चे निर्णय के बिना, सच्चे ज्ञान के बिना सच्चा ध्यान नहीं हो सकता। पहले वो भी क्रम दिया है, पहले सच्चा निर्णय होता है स्वरूप का, फिर स्वरूप का ज्ञान होता है, फिर स्वरूप का ध्यान होता है। हाँ, गुरुवाणी अपना स्वरूप का भाव भाषण और स्वरूप का ज्ञान ध्यान, इसलिए तुम श्रुत के अवलंबन को, श्रुत के चिंतन को साथ ही रखना, गुरुवाणी को श्रुत कहते हैं, जिसको भाव श्रुत प्रकट हुआ है उनकी वाणी को द्रव श्रुत कहने में आता है। श्रवण योग हो तो तत्काल बोधक गुरुवाणी में, और स्वाध्याय योग हो तो नित्य बोधक ऐसे आगम में प्रवर्तन रखना। देखो क्या दो में अंतर छाता है, जो गुरु का प्रत्यक्ष योग हो श्रवण योग में, उनकी वाणी का श्रवण का प्रत्यक्ष हो योग हो तो तत्काल बोधक है, उसी वक्त बोध को प्राप्त करवाने वाला है, तो उसी काल में ही मिलता है, वर्तमान में ही मिलता है। और स्वाध्याय योग हो तो नित्य बोधक, और आगम तो नित्य बोध देने वाला है, क्योंकि वो तो नाश नहीं, वो तो उसका तो विधिमानता रहती है, आगम चला नहीं जाता। गुरु तो मर्यादित काल से योग मिलता है, आगम का योग तो हमेशा मिलता है, उसमें प्रवर्तन रखना।
ये जो आगम का योग है नित्य बोध भले
हाँ नहीं, उसमें क्या है, इसलिए पहले गुरु की बात लिया है, आगम की बात पीछे रखी है, पहले नहीं रखे, आगम की बात तो पीछे रखी है।
तत्काल
बोध
हाँ 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 पहले लिया ना कि गुरुवाणी हो तो उसको पहले पहले लाभ लेना, गुरुवाणी का लाभ
लेना
पहले लेना। नहीं पहचाने, वो तो है प्रत्यक्ष योग के बिना कोई बात आगम की भी समझ में नहीं आएगी। इनके अतिरिक्त काल में या दूसरे काल में भी गुरुवाणी एवं आगम के द्वारा बतलाए गए भगवान आत्मा के विचार और मंथन रखना, और इनके अतिरिक्त मैंने शास्त्र नहीं पढ़ते हो तो भी चिंतन मंथन में जो भी गुरु ने गुरुवाणी में आया, जो भी शास्त्र में आया, दोनों बात एक ही है, कोई अलग अलग भिन्न भिन्न बात तो आने वाली
नहीं है,
नहीं है। जो गुरु कहेगा वही शास्त्र कहता है, शास्त्र कहता है वो गुरु कहता है, और उसका विषय क्या है, भगवान आत्मा, वो भगवान आत्मा के बिना विचार और मंथन को रखना तुम, भगवान आत्मा के विचार और मंथन को तुम चालू रखना,
संसार के विचार को,
संसार के विचार को आने देना
नहीं,
नहीं। वो संसार के विचार को नहीं आने दे तो फिर काम कैसे होगा, संसार का काम कैसे होगा, वो काम सब पड़े रहेंगे कि ये तो ऊपर ऊपर के उपयोग से जो होने वाले हैं वो होते हैं, नहीं होने वाले कितना भी ध्यान दो आत्मा का विचार छोड़ करके कुछ होने वाला नहीं है।
उपयोग क्यों करते हैं, उपयोग के बिना भी होते हैं, उपयोग बिना ही होते हैं।
हाँ मैंने ऊपर छल्ला होता है तो बाकी उसमें सावधानी होती नहीं है। हाँ निरस्त परिणाम से इस तरह से इस वचनामृत में ये गुरु को मुख्य रख करके आत्मकल्याण करने का उपदेश दिया है। यहाँ तक
रखा।
जैन धर्म नो